इस आधुनिक परिवेश में भगवद गीता अब कहाँ पे सार्थक है? वो जब बोली गई थी, युग भी और था, द्वापर युग था, अभी कलयुग है। और भगवान स्वयं साक्षात प्रकट रूप में उपस्थित थे, तो कैसे ये समझ सकते हैं कि भगवद गीता हमारे लिए सार्थक है? ऐसा नहीं हो कि पूरा जीवन लगा दिया और बाद में पता चला कि फल ही नहीं मिलने वाला है, इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, है ना। और सब लोग ये जानते हैं और कहते हैं कि भगवान को कोई समझ नहीं सकता, है ना। तो जब कोई समझ ही नहीं सकता भगवान को, और भगवान भगवद गीता में भी खुद ही कह रहे हैं कि मुझे ना तो देवी देव, भगवद गीता के 10वें अध्याय के 2 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ना मैं विदु सुरगणा, कि मुझे देवी देवता भी नहीं जान पाते, प्रभु हम ना महर्षया, और जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा है वो भी नहीं जान पाते, है ना। तो जब जान ही नहीं सकते भगवान को, तो फिर हम उसके लिए प्रयास ही क्यों करें? नहीं, भगवद गीता भगवान ने मतलब बोली थी, ठीक है मान लिया। अर्जुन बहुत कंफ्यूज्ड था, बड़ा परेशानी में था, चलो उसको बोल दी। लेकिन जरूरी थोड़े ना कि जो अर्जुन के लिए उपयुक्त है हमारे लिए भी उपयुक्त होगी वो बात, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है ये बात, है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं कि पूरा जीवन एक विश्वास के ऊपर चलाएं, लेकिन सबसे पहले उस विश्वास की प्रासंगिकता स्पष्ट होनी चाहिए कि जो उस समय कहा गया था वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही उपयुक्त है, उतना ही उपयोगी है। अन्यथा कुछ और रास्ता ढूंढते हैं, या फिर ऐसे ही चलाते हैं, है ना। जंगल राज भागवतों में भी कहा गया है, अहस्ता नाम सहस्ता नाम, जो जंगल राज की परिभाषा दी गई है, अहस्ता नाम, जिनके हाथ नहीं होते वो भोजन बन जाते हैं, सहस्ता नाम, कि जिनके हाथ होते हैं वो, जिनके हाथ नहीं होते उनको खा जाते हैं। अपदानी चतुष्पदम, और जिनके पैर नहीं होते उनको पैर वाले खा जाते हैं, घास फूस है, नहीं घास फूस है जानवर खा जाते हैं, घास फूस के पैर नहीं है नहीं चल सकती। सो चतुष्पदम फलगुणी तत्र महताम, और जो कमजोर हैं उसको बलवान खा जाता है, शेर ने हिरण और कई जानवरों को खा जाता है, बड़े बड़े जिराफ होते हैं उसको भी खा जाता है, है ना। छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खा जाती है, और सबसे बड़ी मछली को कौन खाता है? आदमी, नहीं पकड़ लेते हैं खा जाते हैं। तो ये जंगल राज है कि जीवो जीवस्य जीवनम, कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, सामने आया खा लो उसको। सो कई लोग ये भी बोलते हैं कि देखो अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो जो मन में आता है वो करो, आखिरकार स्वतंत्र हो, स्वतंत्र जीवन है आपके पास में, आप स्वतंत्र देश में पैदा हुए हो, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर शराब पीने का मन कर रहा है तो पियो, क्यों मन को मारते हो? हाँ, मन को दुखी करोगे तो पाप लगेगा। नहीं, अगर मांस खाना है तो खा लो, क्या है? हाँ, इंद्रिय तृप्ति करो, इंद्रिय तृप्ति करोगे तो धीरे धीरे मन शांत होगा। सो ऐसे बहुत सारी जो बातें प्रचलित हैं और सुनने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, नहीं? स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता से जीवन बिताओ। आप सब में से कितने लोग हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल या स्कूटर पर यात्रा की हुई है? कितने लोग बैठे हो मोटरसाइकिल स्कूटर पे? आप लोग नहीं बैठे? तो फिर बोलते क्यों नहीं हो, बैठे हो तो। सो आप में से कितने लोग ऐसी मोटरसाइकिल पे बैठना चाहेंगे जिसकी ब्रेक फेल है? सो ये स्वतंत्रता इसी तरह है ना, कि बिना रोक टोक चलो। हम लोग स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ नहीं समझते हैं, है ना? स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है कि बिना ब्रेक की गाड़ी चलाओ। बिना ब्रेक की गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर कोई अपने घर से अच्छी भली स्कूटर लेके निकला, रास्ते में ब्रेक खराब हो गई उसकी, तो कैसे चलाएगा मोटरसाइकिल या स्कूटर? बिल्कुल 5 किलोमीटर की स्पीड पे चलाएगा कि किसी तरह से डरते डरते मैकेनिक के पास पहुंचे, ठीक करवा लें। 100 की स्पीड पे तो नहीं चलाएगा। लेकिन अगर कोई नई मोटरसाइकिल लेके आया, पता है सब एकदम आगे और पीछे दोनों ब्रेकें अच्छे से लग रही हैं, तो 100 की स्पीड पे भी भगाए तो खतरा नहीं है, जैसे ही जरूरत पड़ेगी ब्रेक लगा लें। तो जो ये नियम और कानून है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मनुष्य जीवन की ब्रेक्स हैं, ये है ना? अगर ये ब्रेक्स नहीं होंगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं? सो ये जो ब्रेक्स बनाई हैं, विधि विधान बनाए हैं, ये विधि विधान हमारी सुरक्षा के लिए हैं, हमें बांधने के लिए नहीं है। ये विधि विधान इसलिए हैं कि हम सुरक्षित रूप से अपना जीवन यापन करें और अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं। जो हमारी मंजिल है, जो लक्ष्य है हमारा, उसको हम प्राप्त कर लें। सो जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का संदेश दिया था, तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण बात है कि वो संदेश युद्ध के मैदान में ही दिया। करोड़ों वर्ष पहले सूरज के देवता विवस्वान को भी दिया था, और भगवान कह रहे हैं कि देखो, जो ज्ञान मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था, वही ज्ञान मैं अर्जुन तुम्हें अभी दे रहा हूं। और जब सूरज के देवता विवस्वान को वो ज्ञान दिया गया था, उस समय लड़ाई नहीं हो रही थी, आराम से बैठ के शांति से, जैसे आप लोग बैठे हो आराम से सुन रहे हो, नहीं? वही ज्ञान भगवान ने बिना उसमें कुछ परिवर्तन किए अर्जुन को दिया, युद्ध क्षेत्र के बिल्कुल बीच में खड़े होकर। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो भगवत ज्ञान है वो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि शांति का वातावरण है तो ये 4 नियम चलेंगे, अगर अशांति है, दुख है, तो ये 4 नियम चलेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान ने जो ज्ञान दिया अर्जुन को, वो ज्ञान जो है वो हर परिस्थिति, काल, क्षेत्र, व्यक्ति किसी पर भी निर्भर नहीं है और सब पर पूरी तरह से लागू है। कोई व्यक्ति कह सकता है हम नहीं मानते, हम तो स्वतंत्र हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि जिसको वो स्वतंत्रता कह रहे हैं वो वास्तव में बंधन है। तो आजकल तो ये स्कूल कॉलेज के आसपास सिगरेट नहीं बेच सकते, नहीं, लेकिन शराब बेच सकते हैं। शराब की दुकान भी नहीं स्कूल कॉलेज के आसपास, कम से कम 100 मीटर, और लोग 500 किलोमीटर चल के शराब खरीद लेते हैं। 100 मीटर से क्या होगा। हाँ, सो दो स्टूडेंट्स थे, वो कॉलेज जाते थे तो रास्ते में एक शराब की दुकान आती थी, तो एक जो छात्र था वो देखता ही नहीं था शराब की दुकान की तरफ, दूसरा जो छात्र था, स्टूडेंट था, उसने कहा मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं क्यों अपने आप को रोकूं शराब पीने से, मैं क्यों अपने मन को मारूं, स्वतंत्र हूं मैं। उसने लिया एक सबसे छोटा, क्या बोलते हैं उसको, पौवा, पौवा, हाँ, और पौवा लिया या पैग लिया, पैग उससे भी छोटा होता है, तो उसने लिया और पी लिया, देखो कुछ नहीं हुआ। हाँ, पूरा नियंत्रण है मेरा अपने आप पर। ये अमेरिका की घटना है। हाँ, सो एक दो हफ्ते के बाद फिर पी लिया, देखो मैंने 15 दिन तक नहीं पीना, क्या हुआ, मेरा अपने मन पे नियंत्रण है, मैं स्वतंत्र हूँ। फिर लिया, पी लिया, धीरे धीरे वो 15 दिन घट के 5 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, फिर रोजाना शुरू हो गए। तो अब वो सुबह उठता था तो सोचता था कहाँ पर है शराब, तो लाके घर पे रख ली, स्वतंत्र हूं मैं, मुझे कौन रोक सकता है घर में शराब रखने से, नहीं। एक दिन आधी रात को उठा तो तलब लग गई उसको अपनी स्वतंत्रता का प्रदर्शन करने की। फ्रिज खोला, बॉटल देखी तो बॉटल खाली थी, रहा नहीं जा रहा था, मुझे अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग अभी करना है। आधी रात को गाड़ी उठाई और वहां तो 24 घंटे मॉल खुले रहते हैं, तो वो गया 20-30-40 किलोमीटर दूर शराब की बोतल खरीदने के लिए, वही वाला ब्रांड चाहिए, तो वो लेके आया। और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, क्या करूं, अंधेरा, एकदम घुप अंधेरा, तो गाड़ी साइड पे खड़ी करके शराब की बोतल निकाली और पैदल चल दिया घर की ओर। बर्फ गिरनी शुरू हो गई, हाँ, स्नोफॉल, तो एक गड्ढा आया, गड्ढे में गिर गया, हाँ, और जो बोतल है वो टूट गई और उसके ऊपर सारी शराब गिर गई। तो सोच रहा था कि ये कैसी स्वतंत्रता है। उस समय उसके मन में ये विचार आया कि ये कैसी स्वतंत्रता है, मेरे चारों तरफ सारे लोग सुख से घर में सो रहे हैं, मैं, बर्फ गिर रही है, गड्ढे में गिरा हुआ हूं मैं, हाँ, घर कैसे पहुंचूंगा, ठिकाना नहीं है। तो ये कैसी स्वतंत्रता है? इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जिसने मन पर काबू नहीं किया, पूरी दुनिया को जीत ले तो भी हारा ही हुआ है, और जिसने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। तो ये जो विधि विधान है ये हमारी स्वतंत्रता में बाधक नहीं है, ये हमारी स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं कि ताकि हम लंबे समय तक सुख से रह सकें। तो जो भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान दिया, और ये भगवान ने ज्ञान ऐसा ज्ञान दिया जो कि किसी भी समय काल व्यक्ति से परे है, दिव्य है, उस पर आधारित नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक पर लगेगा दूसरे पर नहीं लगेगा, सब पर लगेगा वो। तो लेकिन वो ज्ञान तो 5000 साल पहले दिया था, सो अभी कैसे उसको चलाएं? बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। क्या बदल गया? क्या सूरज पश्चिम से निकलना शुरू हो गया? 5000 साल पहले सूरज कहां से उग रहा था? पूरब से। आज पूरब से ही उग रहा है ना? पहले भी जितने लोग पैदा हो रहे थे सब मर जा रहे थे, अभी भी जो पैदा होता है सब मर जाते हैं। तो कहते भी हैं कि सब लाइन में लगे हुए हैं, कोई आगे है और कोई पीछे है, लाइन में सब लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि देखो वो लाइन में लगे हुए हैं, मैं नहीं लगा हुआ। ये बकरे की सोच होती है। जब बकरे को काटने के लिए ले जाया जाता है ना कसाई घर में, तो बहुत सारे बकरों को इकट्ठा लेके जाते हैं कसाई घर में, वो घास डाल देते हैं, तो बकरा घास खाता है, सारे बकरे घास खा रहे होते हैं। तो एक बकरे को ले जाते हैं और ठक मार देते हैं, वो बकरा एकदम डर जाता है। तो देखता है मैं ठीक हूँ, वो मर गया, वो मर गया, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। तो ये बकरे की मानसिकता है कि देखो वो मर गया, मैं नहीं मरूंगा। और यमराज जी ने पूछा था युधिष्ठिर महाराज से यक्ष के रूप में, नहीं कि मुझे बताओ कि सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला था कि सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारे आसपास सब मरते जा रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे। वो मर गया और उसको हार्ट अटैक हुआ था, देखो मर गया। वो मर गया, उसको डायबिटीज थी, शुगर की बीमारी थी, मर गया। मुझे ना हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारी है, ना शुगर है, मैं तो मरूंगा ही नहीं। वो मर गया क्योंकि वो 80 साल का था, मैं तो अभी 40 साल का हूँ, मैं कैसे मरूँ, है ना? वो मरेगा 80 साल वाला, मैं नहीं मरूंगा, नहीं। तो ये बकरे की मानसिकता कहते हैं उसको, कि वो मर गया, दूसरा बकरा मर गया, लेकिन मैं बच गया, मैं सुरक्षित हूँ, और सारे सुख के साधन है मेरे सामने, हरी घास भी रखी हुई है, आराम से मैं हरी घास खा सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया कि देखो जो बकरे की सोच है, अपने शरीर के बारे में सोचना, इस सोच से बाहर निकलो, इस सोच में उलझे मत रहो, ये मत सोचो कि वो मेरा है, ये मेरा है, वो पराया, वो मेरा मित्र है, वो मेरा दुश्मन है, ऐसा मत सोचो। ऐ भाल ऐ मंद ऐ सब भ्रमा, ये अच्छा है ये बुरा है। तो फिर भगवान ने अर्जुन को ये क्यों बोला कि मार दो अपने गुरुजनों को, मार दो, हाँ अपने परिवार के लोगों को ही मार दो, जिनसे सीखा उन्हीं को मार दो। द्रोणाचार्य से सीखा था, हाँ, द्रोणाचार्य को ही मार दो। तो अर्जुन ने पूछा भगवान से कि भगवान ऐसा तो नहीं है कि कृष्णा कि मैं बुरे काम करना नहीं चाहता, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, लेकिन जबरन मुझसे कोई बुरा काम करवा रहा है, लेकिन उसका फल किसको भोगना पड़ रहा है? उसका फल मुझे भोगना पड़ रहा है। तो अर्जुन ने अप्रत्यक्ष रूप से पूछा कि कृष्णा आप तो नहीं करवा रहे सारा काम और भुगतना मुझे पड़ रहा है, नहीं? सो भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये समझ लो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला कि ये जान लो कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, बोधव्यम, ये जानने योग्य है, ये जान लो। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि क्या कर्तव्य है, क्या करने के योग्य है और क्या करने के योग्य नहीं है, तुम बंधन में फंसे रहोगे। बंधन में फंसने का मतलब है बार बार जन्म लेना और बार बार मर जाना। इससे बड़ा बंधन और क्या है? जैसे एक बैल के गले में 10 मीटर रस्सी बांध के खूंटे से गाड़ दिया उसको, अब वो बैल सोच रहा है कि देखो 10 मीटर में मैं कहीं भी जा सकता हूं, नहीं, मैं यहां भी घास खा सकता हूं, मैं वहां भी घास खा सकता हूं, स्वतंत्रता है मेरे पास। वो ये नहीं सोच रहा कि गले में तुम्हारे रस्सी बंधी हुई है और तुम जितने इस खूंटे के चक्कर काटोगे और रस्सी क्या है, लिपटती जाएगी, और जो वो 10 मीटर का दायरा था वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और फिर बैल खींचता है कि मैं पहले वहां तक जा पा रहा था, अब नहीं जा पा रहा, तो खींचता है रस्सी को। रस्सी को जब खींचेगा तो क्या होगा, दम घुटना शुरू हो जाएगा। तो सोचता है यार दम घुट रहा है, और जोर से खींचता है और ज्यादा दम घुटना शुरू हो जाता है। तो जब तक हम ये नहीं जान लेंगे कि क्या कर्म है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब तक हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास करेंगे, लेकिन हमारा जो दम और उतनी तेजी से घुटता रहेगा। जितना हम ज्यादा प्रयास करेंगे बिना जानकारी के अच्छे से अच्छा काम करने के लिए, उतना ही हमें और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि जान लो भाई, पहले जल्दबाजी से काम मत लो, पहले समझ लो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जब जब अर्जुन ने कहा कि आप मुझे बताएं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा क्या कर्तव्य है, कृपया करके आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम्हें और तुम्हारे द्वारा, अर्जुन के द्वारा भगवान ने सब जीवों को ये उपदेश दिया कि भगवान के आदेशों का पालन करना ही पुण्य है, कर्म है अच्छा, बाकी सब बेकार है। कितने ही परोपकारी काम कर लो, अगर भगवान के आदेश का पालन नहीं किया, अगर भगवान को केंद्र बिंदु में नहीं रखा तो उसका नुकसान होगा। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो धर्म है वो भगवान की वाणी है, भगवान के आदेश है। और भगवान ने अर्जुन को बोला कि देखो आप कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन जो मुख्य सिद्धांत है, जो मुख्य जो केंद्र बिंदु है जिसके ऊपर तुम्हें अपना पूरा जीवन बिताना चाहिए, वो सिद्धांत है मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हमेशा मेरा ध्यान रखो, हमेशा मेरा भजन करो, जो भी करो मेरे निमित्त करो। पहले से ही सोच लो कि मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ। अगर ये सोच के साथ में अगर हम कार्य करेंगे, अगर आप इस सोच के साथ में, इस चेतना के साथ में अगर आप कार्य करेंगे तो कर्म बंध में नहीं फंसेंगे। इसको बोलते हैं यज्ञार्थ, कि यज्ञ के निमित्त। यज्ञ का अर्थ है भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण के निमित्त कार्य करना। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के निमित्त कार्य किया, क्योंकि पूरी पृथ्वी आसुरिक राजाओं के बोध से बहुत त्रस्त थी, बहुत दुखी थी, और भगवान का आने का उद्देश्य यही था। हाँ, तीन उद्देश्य थे भगवान के आने के लिए। क्या क्या तीन उद्देश्य थे? हाँ, धर्म की स्थापना, और दूसरा अधर्म का, अधर्मियों का नाश करना, और तीसरा परित्राणाय साधुना, साधुओं का कल्याण करना, है ना? वो इतना मशहूर श्लोक है महाभारत सीरियल का, नहीं? सो तीन जो मुख्य उद्देश्य थे भगवान के, तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं भगवान जब भी अवतरित होते हैं, साधुओं के कल्याण के लिए, असुरों के विनाश के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए। सो भगवान कृष्ण धराधाम पर आए तो उन्होंने भीष्म, अर्जुन, पांडव, कुंती इत्यादि अपने जितने भी भक्त थे उनका उद्धार किया, उनको सुख पहुंचाया, और अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया, उसके माध्यम से भगवान ने धर्म की पुनः स्थापना की। और तीसरा जो भगवान का उद्देश्य था, विनाशाय च दुष्कृताम, असुरों का नाश करना। वो असुरों का नाश करने के लिए भगवान अर्जुन को निमित्त बनाना चाहते थे। तो जब भगवान अगर कुछ आदेश दें तो फिर उसमें सही गलत का विचार बेकार है, गलत है। भगवान का आदेश हमेशा परम कल्याणकारी ही रहेगा। तो अर्जुन अहिंसा के नाम पर भगवान के आदेश को पालन करने में आनाकानी कर रहा था। सो भगवान ने अर्जुन को बोला कि देखो तुम अहिंसा का सहारा लेकर मेरे आदेश की अवहेलना मत करो, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाचिन, हे अर्जुन तुम निमित्त बनो, सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुमने तो सिर्फ उसको एक दिखाना है ड्रामा के रूप में लोगों को कि मैं तुम्हें श्रेय देना चाहता हूँ सब लोगों को मारने का, ये सब लोग मेरे द्वारा वास्तव में पहले से ही मारे जा चुके हैं। सो हमें अपने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों की आड़ में या अनेक परिस्थितियों की आड़ में हमें भगवान के आदेश का पालन करने से बचना नहीं चाहिए। पूरी भगवद गीता का यही उद्देश्य था, अर्जुन को ये समझाना और अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को ये समझाना कि आप किसी भी बहाने से भगवान के आदेश का पालन करने से हटे मत, बचे मत। किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना लगे, हमेशा भगवान के आदेश का पालन करें, भगवान की आज्ञा का पालन करें। क्यों पालन करें? क्योंकि इसी में जीव का परम कल्याण है। जो भौतिक भव बंधन है, भौतिक भव बंधन कटेगा जब हम भगवान की शरण लेंगे। अब हम भगवान को दिखाएं कैसे कि हमने आपकी शरण ली है? यहां पे आए, भगवान के सामने खड़े हो गए, बोले कि हम आपके शरणागत हैं, हरे कृष्ण। ऐसा कहने भर से भगवान की शरण प्रमाणित नहीं होती। शरण लेने का मतलब है आदेशों का पालन करना, शरण लेने का मतलब है कहना मानना। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हे भगवान, आप बहुत महान हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन आपका कहना नहीं मानूंगा। ये शरणागति नहीं है। अगर हम भगवान को ये बताना चाहते हैं कि हम आपके शरणागत हैं, तो हमें वो शरणागति जो है प्रमाणित करनी पड़ेगी, हमें भगवान को दिखाना पड़ेगा। ये दामोदर को ना मेरे साथ भेज देना, मैं इसको एक हफ्ता अपने पास रखूंगा इसको, तो ये सही हो जाएगा, है ना? सबको परेशान करता है ये। हमें ये प्रमाणित करना पड़ेगा भगवान को कि मैं वाकई में गंभीर हूँ, मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ। और ये हम प्रमाणित कर सकते हैं भगवान के आदेश का पालन करके। और भगवान कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, भगवान सिर्फ दो ही चीज़ें मांग रहे हैं आपसे। भगवान ये नहीं कह रहे अपना सारा धन लाके मुझे दे दो। भगवान लक्ष्मीपति हैं, आपके पास जो कुछ है भगवान ने तो दिया है, आप तो खाली हाथ आए थे, और वापस कैसे जाओगे गठरी बांध के? वापस भी खाली हाथ जाए। गरुड़ पुराण में लिखा भी हुआ है कि बंधु बांधव जो सामान है, धन संपत्ति घर में छूट जाती है, बंधु बांधव कहाँ छूट जाते हैं? शमशान में छूट जाते हैं। तो साथ क्या जाता है? आपके कर्म साथ जाते हैं, वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो जिस वस्तु ने हमारे साथ शमशान से भी आगे जाना है, उसके बारे में हम गंभीरता से क्यों नहीं विचार करते हैं? तो हमें भगवान को दिखाना पड़ेगा। और भगवान कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ दो ही चीजें चाहिए आपसे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आप मुझे यो में भक्त्या प्रेक्षति, मुझे भक्ति भाव से, प्रेम से, हाँ, फल फूल पानी ये अर्पण कर दो। क्या मांग लिया हमसे भगवान ने? करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लग रही हुई हैं, हाँ, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। संभ्रम मतलब आदर सहित, हमारी तरह बेमन से नहीं, आदर सहित भगवान की सेवा में लगी है। लेकिन भगवान उस सुख से, वो सुख का आस्वादन करते हुए भी भगवान हमारे बारे में सोच रहे हैं। कितना वैराग्य है भगवान का। कितना वैराग्य है, कितने सुख में है, और फिर भी बोल रहे हैं चलो तुम एक तुलसी का पत्ता मुझे ऑफर कर दो, अर्पण कर दो, मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन प्रेम से करना। क्यों? क्योंकि भगवान भावग्राही है। और दूसरी बात, भगवान क्या हमसे चाहते हैं कि मेरे दिव्य नामों का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर ये दो कार्य अगर हम करते हैं, अगर हम ये दो काम, सिर्फ ये दो काम अगर हम करें, तो हम धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते हम लोग जीवन के अंत में सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। हमें अपना जीवन इस प्रकार से ढालना चाहिए कि हम हमेशा भगवान का स्मरण कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप आज ये प्रवचन सुन के जाएं और आप बोले अब तो 24 घंटे हम भगवान का स्मरण करेंगे, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी आप जाके 16 माला शुरू कर देंगे। जो 16 माला कर रहे हैं अच्छी बात है, उनको और बढ़ाने चाहिए अपनी मालाएं। जो अभी माला नहीं कर रहे हैं वो एकदम से 16 माला नहीं कर पाएंगे, 2 माला, 1 माला, धीरे धीरे अभ्यास पड़ेगा, एकदम से कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन हमें ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी खाएं भगवान को भोग जरूर लगाएं, क्योंकि भगवान को अगर हम भोग नहीं लगाएंगे तो वो पाप ही है, वो भोजन नहीं है। अगर भगवान को भोग नहीं लगाया तो पाप ही खा लिया, भोजन नहीं खाया, उससे हमारा शरीर का पोषण हो सकता है लेकिन आत्मा हमारी संकुचित हो जाएगी, आत्मा हमारी कमजोर हो जाएगी। और हम शरीर है कि आत्मा है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमें हमेशा शरीर के बारे में नहीं सोचते रहना चाहिए। ये किराए का मकान है, आपका जब एग्रीमेंट खत्म होगा तो धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, जबरन कब्जा नहीं कर सकते आप इस पे, रेंट एग्रीमेंट खत्म बाहर निकाल देंगे। तो किराए के मकान के बारे में बहुत ज्यादा गंभीरता से विचार मत रखिए। जो उस किराए के मकान में रह रहा है आप आत्मा, उसके बारे में और ज्यादा गंभीरता से सोचिए। सो भगवान को फल फूल, हाँ पानी, भगवान को हम ये, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान को फल फूल ऑफर किए और गुलाब जामुन आप खा जाओ। हर चीज जो भी क्षमता के अनुसार है आप भगवान को भोग लगाएं और भगवान उसमें से निश्चिंत रहिए, भगवान कुछ भी उसमें से निकालेंगे नहीं, आपको यथारूप वापस दे देंगे। तो आपने सिर्फ 10 मिनट इंतज़ार किया, भगवान के सामने आपने भगवान को प्रार्थना की कि हे भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए हम ये पकवान आपके सामने लेके आए हैं, मुझ में बहुत कमियां हैं लेकिन आप बहुत दयालु हो, आप मेरी कमियों को नहीं देखिए, मेरे भाव को देख के आप ग्रहण कर लीजिए। इसीलिए भगवान पलक झपकाते हैं, भगवान को पलक झपकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान पलक झपकाते हैं कि जैसे ही दोष सामने आते हैं भक्त के, भगवान पलक झपका लेते हैं, दोष को नहीं देखते। और जो भी छोटी से वह है भगवान गौर से देख लेते हैं और उसका फल दे देते हैं। सो हमें अपना जीवन इस प्रकार से ढालना चाहिए कि हम अधिक से अधिक समय जो है भगवान का, भगवान को याद रख पाएं, ये याद रख पाएं कि भगवान भी हैं, हम तो हैं ही, भगवान भी हैं और भगवान से हमारा एक संबंध है और वो संबंध पिता और पुत्र का है और पुत्र का, संतान का कर्तव्य है पिता की सेवा करना। सो जैसे जैसे हम इस चेतना को बढ़ाते जाएंगे और जब ऐसा समय आएगा कि हम हमेशा भगवान को याद रख पाएंगे, उस समय को समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब ये नहीं है कि हिमालय पर्वत पर जाकर भूखे प्यासे नंगे बैठे रहो, वो समाधि नहीं है। भागवतम के तीसरे स्कंद के पांचवें अध्याय में मैत्रेय जी बता रहे हैं विदुर जी को कि जो इस तरह से समाधि लगाकर और कठिन तपस्याएं करके भगवान से एक होना चाहते हैं, बहुत ही कष्ट पाते हैं। और भगवान भगवद गीता में भी कह रहे हैं कि जो अव्यक्त आसक्त चेत साम, कि जो मेरे अव्यक्त रूप से आसक्त है, जो मेरे अव्यक्त रूप को पाना चाहता है, उसको बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही कष्टों का सामना करना। समाधि का अर्थ है ऐसी अवस्था को प्राप्त करना जहाँ पर हम हमेशा भगवान का निरंतर स्मरण कर पाए। और ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेने पर जब हम अपने शरीर का त्याग करेंगे उचित समय आने पर, तो दोबारा जन्म नहीं लेंगे। ऐसी अवस्था आने पर हम शरीर छोड़ने पर, क्योंकि हमारे, हमें ये अभ्यास है निरंतर भगवान का स्मरण करने का, तो हम मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण करेंगे। और जब मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि जो मेरा स्मरण करते हुए तज्यन्ति अन्ते कलेवरम, जो मेरा स्मरण करते हुए अंत में ये शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ते समय मेरा स्मरण करता है, वो मेरे पास ही आता है, इसमें हे अर्जुन कुछ भी संशय नहीं है। और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, इसी के निमित्त मनुष्य जीवन मिला है। जिस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी सरकारी जिम्मेदारी मिली या प्राइवेट कंपनी में बहुत बड़ी नौकरी मिली, अगर उसने ढंग से वहाँ काम नहीं किया तो उसको इस नौकरी से निकाल देते हैं। तो ये जो मनुष्य जन्म है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हमने इस जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वाह नहीं किया तो भगवान हमारे से ये जिम्मेदारी वाला जो पद है वो छीन लेंगे। और ये जिम्मेदारी वाला पद छीनने का अर्थ है भगवान हमें निम्न योनियों में डाल देंगे। आप ऐसे कार्य करें कि आपको ये कुत्ते बिल्लियों की तरह जन्म नहीं लेना पड़े। ये जो कुत्ते बिल्ली सड़क पर घूम रहे हैं, सुअर, ये सब भी हमारे जैसे ही थे पहले। इन्होंने अच्छे से मनुष्य जीवन का उपयोग नहीं किया तो देख लो क्या हाल हो गया है। अगर हम अच्छे से उपयोग नहीं करेंगे मनुष्य जीवन का, तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ यह हाल हो गया, हमारे साथ नहीं होगा, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए कि हम आज एक कमरे के मकान में किराएदार हैं, हम ऐसे काम करें कि एक महल में उसके स्वामी बन जाएं, हम किराएदार ना रहकर। और महल में स्वामी बनने का हमें अवसर मिलेगा जब हम वापस भगवत धाम चले जाएंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि आप प्रयास करें, जो भी वस्तु आप अपने खाने के लिए लाए हैं, जो बना रहे हैं, उसको भगवान को पहले भोग लगाएं, भगवान को भोग लगा कर ही खाएं और अभ्यास करें माला पर भगवान के दिव्य नामों का जप करना। और बहुत ही आसान है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्र जपने से किसी को थकान हुई? थकान नहीं। तो आप अगर ये मंत्र का जप करेंगे आपको किसी भी थकान का अनुभव नहीं होगा, बल्कि आपकी जब आत्मा पुष्ट होगी तो आप में आपके शरीर में और अधिक ऊर्जा का संचार होगा, आप और अच्छे से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पाएंगे। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो भगवान चाहेंगे तो मैं भक्ति कर लूंगा या भक्ति कर लूंगी, भगवान नहीं चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं, है ना? तो अगर हम भक्ति नहीं कर पा रहे तो भगवान ही की तो इच्छा है ये। हम तो देखो करना चाहते हैं लेकिन भगवान की इच्छा के सामने हम क्या करें, हम तो बेबस हैं, लाचार हैं, हमारी बहुत इच्छा है। और भगवत गीता में तो हमारे और भगवत गीता में भगवान कह भी रहे हैं उपदृष्टा अनुमंता च, कि हर कार्य मेरी अध्यक्षता में हो रहा है और मैं ही सुविधा प्रदान कर रहा हूं। अगर हम पलक भी झपका रहे हैं तो हमारे शरीर में वायु है, अपान उदान ये वायु है हमारे शरीर में तरह तरह की, तो उन वायु के कारण हम पलक झपका पाते हैं, खाना खा पाते हैं। अगर वो वायु ठीक से काम नहीं करे तो जैसे लकवा मार जाता है, हाथ हिलाना चाहते हैं हिला ही नहीं सकते, बेबस। तो भगवान कह रहे हैं उपदृष्टा अनुमंता चा, कि देखो मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, मैं हर चीज का साक्षी हूं, और अनुमंता चा, और मैं अनुमति भी दे रहा हूं। तो अभी भगवान ने अनुमति नहीं दी हमें माला जपने की, मंदिर आने की, तो कैसे करें प्रभु, कैसे भगवान की इच्छा के विरुद्ध चले जाएं? ये तो देखो गलत बात कह रहे हो आप, भगवान नहीं चाह रहे और आप कह रहे हो कि करो, तो क्या उत्तर है इसका? तो जब भगवान कह रहे हैं उपदृष्टा अनुमंता च, कि मैं हर जितने भी कार्य हैं चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों उसको मैं ही देखता हूं और अनुमति भी मैं ही प्रदान करता हूं, तो ये भगवान उस पिता की तरह बोल रहे हैं जो अपने बच्चे को समझाता है, देखो वो काम ठीक नहीं है, वो पिक्चर देखने मत जाओ। नहीं मैं तो जाऊंगा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है उस पिक्चर को देखने आना। नहीं नहीं सब जा रहे हैं मैं भी जाऊंगा। और अगर पिता मना कर दे तो खाना पीना बंद। तो आखिर में हार के पिता क्या करता है? उसको पिक्चर देखने की परमिशन दे देता है। और क्या सिर्फ परमिशन देता है? टिकट कहां से आएगी? वो पैसे भी पिता ही देते हैं। उसी प्रकार से हमारी इच्छाएं, हम गलत काम करना चाहते हैं और मान नहीं रहे, भगवान ने शास्त्रों में कह दिया ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी हम भगवान की आज्ञा के बिल्कुल उल्टा जाकर जिद पकड़ी हुई है काम करने की, तो मजबूर होकर भगवान अनुमंताचा अनुमति भी देते हैं और सुविधा भी प्रदान करते हैं, लेकिन एक शर्त लगा देते हैं, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो इसके परिणाम के जिम्मेदार आप हो। सो अगर कोई ये कहे कि अभी तो भगवान की इच्छा नहीं है, भगवान की कृपा होगी तो करेंगे, भगवान की कृपा तो है, ये कहना कि भगवान की कृपा होगी तो करेंगे, इसका मतलब यह है कि अभी भगवान की कृपा नहीं है। लेकिन भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं सुहृतम सर्वभूतानाम, मैं तो सभी पे कृपा कर रहा हूं, मैं तो सभी का हितैषी हूं। तो भगवान कृपा कर रहे हैं, हम वो कृपा ले नहीं रहे हैं। 440 वोल्ट का करंट बह रहा है, हम ही लकड़ी के बने हुए हैं, करंट बह रहा है असर ही नहीं हो रहा, बारिश हो रही है छाता खोला हुआ है, बारिश हो रही है बहुत तेजी से, लेकिन आप गीले क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपने अपनी इच्छाओं का, अपने हठ का छाता खोला हुआ है, आप पानी को अपने आप को छूने ही नहीं दे रहे। तो भगवान की कृपा है, भगवान चाहते हैं कि हम करें, लेकिन हमारी जिद है कि हम नहीं करेंगे, तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण भगवत गीता में मिलता है। भगवान ने पूरी भगवत गीता अर्जुन को सुनाई और आखिर में क्या बोला, जाओ जाके मारो। पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यथा इच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। भगवान ने अर्जुन को भी मजबूर नहीं किया कि अब तो देखो तुमने मेरा आधा घंटा खराब कर दिया, 35 मिनट लगे थे, 35-40 मिनट भगवत गीता बोलने में। अब भगवान ने यह नहीं कहा देखो तुमने मेरा टाइम खराब किया, अब तुम्हें ये करना पड़ेगा, नहीं। पूरा ज्ञान देने के बाद भी भगवान बहुत ही प्रेम से, बहुत ही करुणा से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं यथा इच्छसि, जैसी तुम्हारी इच्छा है तथा करो, वैसा कर लो। सो अगर कोई बोले कि भगवान की अभी इच्छा नहीं है, बिल्कुल बोगस विचार है, भगवान की इच्छा है, हमारी इच्छा नहीं है। भगवान सभी पर समान रूप से कृपालु हैं, ऐसा नहीं है कि एक भक्त पर विशेष कृपा कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति पर नहीं कर रहे, सब पर विशेष कृपा है। अब आप उस कृपा को कितनी गहराई से स्वीकार कर रहे हो ये आप पर निर्भर करता है, ये भगवान पर निर्भर नहीं करता। भगवान जबरदस्ती करंट नहीं लगाएंगे आपको, भगवान इंतजार करेंगे कि कब आप स्व इच्छा से, अपनी मर्जी से आप भगवान के शरणागत हों। और भगवद गीता में जैसा हमने बताया, भगवान ने ये प्रमाण भी दिया कि जबरदस्ती नहीं है भैया, अपनी मर्जी से करो। ये मत कहना कि देखो आपने जबरदस्ती की थी, जबरदस्ती कुछ नहीं है, है ना। हमने भी बाहर को डंडा लेके बंदा थोड़ा ना खड़ा किया हुआ है कि सबको माला करनी पड़ेगी। अभी आपकी इच्छा है कीजिए, लेकिन माला इसलिए करनी चाहिए, भगवान का नाम इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा कल्याणकारी वही है, है ना। चंद्र प्रभु, सो प्रश्न है कि जय विजय भी तो वैकुंठ धाम में थे और उनका वहां से पतन हो गया, तो हम अपने अंतिम लक्ष्य के बारे में कहते हैं कि वैकुंठ जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है वैकुंठ जाने के बाद हम वहां से भी गिर जाएंगे, है ना, यही प्रश्न है ना आपका। तो जो जय विजय का अगर हम उदाहरण की बात करें, तो जय विजय का उदाहरण बहुत ही शिक्षा प्रद है। आप सब जानते हैं जय विजय को कौन है, बुद्ध विहार में रहते हैं, द्वारपाल है, हाँ देखो वो वैकुंठ जगत के द्वारपाल हैं, बुद्ध विहार में नहीं रहते वो, हाँ सो वैकुंठ जगत के द्वारपाल हैं। तो उन्होंने चार कुमारों के प्रति अपराध किया, उन्होंने चार कुमारों के जो विलक्षणता है, जो उनकी उनका जो प्रभाव है वो जय विजय नहीं समझ पाए, तो उनके प्रति अपराध कर दिया, तो उस कारण से उन्हें वैकुंठ जगत से नीचे गिरना पड़ा। तो अगर आप पूछें कि वैकुंठ जगत से क्या नीचे गिरना संभव है, हाँ संभव है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जय विजय के उदाहरण से अगर आप देखें कि जय विजय वैकुंठ जगत से नीचे आए लेकिन हमेशा भगवान की सुरक्षा में रहे, ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ने उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की। लगभग असंभव है वैकुंठ धाम जाकर, भगवत धाम जाकर वापिस आना, लगभग असंभव है। लेकिन अगर आप पूछें कि हो सकता है ना, तो हाँ हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए, बहुत ही दुर्लभ है ऐसा होना। पूरे शास्त्रों में एक ही उदाहरण मिलता है आपको, बहुत ही दुर्लभ है ऐसा होना। लेकिन ऐसा हो भी तो भी भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं और उसको थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी जो है उसको सजा देकर वापस अपने धाम खुद स्वयं लेके जाते हैं वो। ठीक है, और किसी का प्रश्न हो तो। सो प्रश्न है कि इस्कॉन की फुल फॉर्म, इस्कॉन का पूरा नाम क्या है, है ना? ISKCON, इस्कॉन। हाँ, तो इस्कॉन की जो इसकी पूरी परिभाषा है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। हाँ, तो इसका जो उद्देश्य है, जो इसकी परिभाषा है, जो कार्य है इसका, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ जो है, इसकी स्थापना स्वयं भगवान कृष्ण के मिशन को, भगवान कृष्ण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई है। और इस्कॉन की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की स्थापना शिला एसी भक्तिवेदान स्वामी प्रभुपाद ने की, जो कि भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं। और शिला प्रभुपाद ने पश्चिम बंगाल के निवासी थे वो, और उन्होंने वृद्धावस्था में पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। और इतना प्रचार प्रभुपाद की कृपा से बढ़ रहा है कि पिछले हफ्ते परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर भी हरे कृष्णा बोलता है। तो ये शिला प्रभुपाद की विशेष कृपा है। सो कृष्ण भावनामृत संघ का जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को उनके स्वरूप के बारे में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानकारी देना, और भगवान के धाम वापस कैसे जाया जा सकता है उसके बारे में प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, माता जी का प्रश्न है। सो माला जपते हुए नींद आ जाती है ना? अमेरिका में एक सर्वेक्षण हुआ था और उस सर्वेक्षण में बताया कि आजकल नींद ना आने की बीमारी का सबसे बढ़िया इलाज है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। जिसको नींद नहीं आ रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो ठक से। सो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय अगर नींद आ रही है तो अब थोड़ी देर विश्राम कर लो, विश्राम करने के बाद फिर जप कर लो। अगर विश्राम कर चुके थे आप फिर भी नींद अगर आए तो खड़े होकर जप कर लो, चलते हुए टहलते हुए जप कर लो, टहलते हुए अगर आप जप करोगे तो कभी नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप थके हुए हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत काम किया, कपड़े धोए, आजकल कपड़े स्त्रियां थोड़े ना धोती हैं, आजकल तो कपड़े वॉशिंग मशीन धोती है, नहीं, लेकिन फिर भी वो शाम को पति घर में आता है, आज बहुत कपड़े धोए, आज बाहर से कुछ लेके आ जाओ। सो अगर थके हुए हो थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर जप कर लो आराम से, है ना। तो इसीलिए जप करने का सबसे अच्छा समय है सुबह 4 बजे के लिए। आप सुबह 4 बजे उठें, शाम को रात को 10 बजे तक सो जाइए, 6 घंटे की अच्छे से नींद लीजिए, और बिल्कुल जब आप फ्रेश हों एकदम, तो उस समय आप माला का जप करें तो नींद नहीं आएगी। अगर फिर भी नींद का झोंका लग रहा है तो टहलते हुए जप कर लीजिए, ठीक है। सो इसको हम यहीं पर विराम देते हैं।